मत्ती अध्याय 6।
सावधान रहो, तुम लोगों को दिखाने के लिए अपने अच्छे काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गिक पिता से बदले में कुछ हासिल नहीं करोगे। इसलिए जब तुम दान दो तो अपने आगे ढोल ना पिटवाओ, जैसा ढोंगी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं। जब जरूरतमंद लोगों को कुछ दो तो जो तुम्हारा दहिना हाथ करता है उसे तुम्हारा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तुम्हारा दान गुप्त रहे। तब तुम्हारे पिता जो गुप्त में देखते हैं तुम्हें आशीषित करेंगे। जब तुम प्रार्थना करो तो ढोंगियों की तरह ना बनो, लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उन्हें उनका प्रतिफल मिल चुका। लेकिन जब तुम प्रार्थना करो तो अपने भीतरी कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करके अपने स्वर्गिक पिता से अकेले में प्रार्थना करो। तब तुम्हारे पिता जो सब कुछ देखते हैं तुम्हें प्रतिफल देंगे। प्रार्थना करते समय दूसरे लोगों की तरह जो अविश्वासी हैं बकबक मत करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए उनकी तरह मत बनो, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गिक पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानते हैं कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं। इसलिए इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गिक पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे हर दिन की रोटी आज हमें दें, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को माफ किया है वैसे ही हमारे अपराधों को माफ करें। हमें प्रलोभन में पड़ने ना दें, लेकिन बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और शान हमेशा आपकी ही हैं, ऐसा ही हो। इसलिए अगर तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। परंतु अगर तुम लोगों के अपराध माफ ना करोगे तो तुम्हारे परमेश्वर पिता तुम्हारे अपराध माफ ना करेंगे। जब कभी तुम उपवास करो तो ढोंगियों की तरह तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, वे अपना मुंह लटकाए रहते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। लेकिन जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और चेहरा भी धो, ताकि लोग नहीं लेकिन तुम्हारे आसमानी पिता जो गुप्त बातों को भी जानते हैं तुम्हें उपवासी जाने। इस हालत में तुम्हारे आसमानी पिता जो गुप्त में देखते हैं तुम्हें प्रतिफल देंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन संपत्ति मत बटोरो, जहां दीमक और फफुंद बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, लेकिन अपने लिए स्वर्ग में दौलत इकट्ठा करो, जहां ना तो दीमक और फफून बिगाड़ते हैं, ना चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। देह का दिया आंख है, इसलिए अगर तुम्हारी आंखें साफ हैं तो सारी देह रोशनीमय होगी, परंतु अगर आंख अंधकारमय होगी तो सारा शरीर भी अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए तुम में जो ज्योति है वो अगर बुझ जाए तो वो अंधियारा कितना भयानक होगा। कोई इंसान एक ही समय में दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से दुश्मनी और दूसरे से मोहब्बत रखेगा, या एक के प्रति वफादार रहेगा और दूसरे से धोखाधड़ी करेगा। तुम परमेश्वर और दौलत दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने जीवन की चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्या जीवन भोजन से और देह कपड़ों से बढ़कर नहीं? आसमान के पक्षियों को देखो, वे ना बोते ना काटते हैं ना गोदाम में रखते हैं, तो भी तुम्हारे स्वर्गिक पिता उनको खिलाते हैं। क्या तुम्हारी कीमत उनसे कहीं ज्यादा नहीं है? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी उम्र में एक सेकंड बढ़ा सकता है? कपड़ों के लिए फिक्र क्यों करते हो? जंगली फूलों पर ध्यान लगाओ कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो मेहनत करते हैं ना काटते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपनी सारी शान में उनमें से किसी की तरह कपड़े पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी ऐसे कपड़े पहनाते हैं, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो क्यों नहीं पहनाएंगे? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन्हीं सब बातों को पाने की होड़ में लगे रहते हैं। तुम्हारे स्वर्गिक पिता जानते हैं कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और सही जीवन शैली को चाहो तो ये सब चीजें भी तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। आने वाले समय की फिक्र मत करो, क्योंकि भविष्य अपनी फिक्र खुद कर लेगा। आज के लिए आज ही का बोझ काफी है।